जिंदाबाद। मैंने ये जो कहा ना कि ये रजिस्टर बनाए और ये जो जो डेफिनेशन इसमें आपको समझ आती जाए उसको अपने अल्फाज में या इसी किताब के अल्फाज में वहाँ चुन के लिख लें, तो उससे ये होगा अल्लाह आपको खुश रखे जी। अगर आप ऐसे ही कर रहे हैं तो बस आपके फौवारा। आज हम ये चैप्टर नंबर 5 में कुछ रंगीन सफ़े दिए हुए हैं ओरिजिनल किताब में, और कल मैंने इनकी तस्वीरें वहाँ शेयर कर दी थी अपना ग्रुप में। ये पेज नंबर 52 और 53 के दरमियान में यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है जी। तो इस पे पहले पेज पे लिखा है इन्नी जायलो फिल अर्दे खलीफा। आपने और हमने इसका तर्जमा आज तक ये पढ़ा, ये समझा कि अल्लाह फरमा रहा है कि मैं चाहता हूँ जमीन पे एक खलीफा बनाना। नहीं, यहाँ पे लफ्ज है फी फी फी, इन्नी जायलो फिल अर्दे फिल अर्दे फी फी फी, मैंने जमीन में। ये बहुत बड़ा नुक्ता है, ये अलल अर्द नहीं है, जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के अंदर। पहला फर्क समझ आ रहा है, आना शुरू हुआ। जमीन कहाँ है? जमीन का बातिन जो है वो हमारे अंदर के बातिन से जुड़ा हुआ है। तो हमने अपने बातिन के अंदर अगर उतर के जमीन को समझ लिया तो मुमकिन है। इन्नी जायलो, ये नहीं कहा कि मैंने बना दिया, कहा मैं चाहता हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ या मैं बनाऊंगा। जायल ये फेल नहीं कहा। खलीफा, खलीफा क्या होता है? खलीफा अपने बॉस का, अपने बड़ों का, अपने सुपीरियर का, या डिप्टी क्या होता है? डिप्टी जो होता है वो किसी बड़ी अथॉरिटी को डिप्टाइज करता है, सेकंड इन कमांड होता है, वो उसको असिस्ट करता है किन कामों में? जो बड़ा कहता है। वो अपनी मर्जी से नहीं कुछ कर सकता, ना उसे करना चाहिए। अगर कोई बंदा अपनी मर्जियां कर रहा है तो उसको ये ना अलूम की हवा लगती है और ना वो इनके बारे में कुछ जान सकता है। ये तभी मिलता है जब बंदा अपनी जात की उस से हटकर अल्लाह की सिफात और उसकी जात को समझता है। और अपनी मर्जियां, अपनी चलाकियां करना बंद कर देता है, दूसरों के काम आने की ख्वाहिश लेकर काम कर रहा होता है, उसका जाती कोई मफाद नहीं होता, तब जाकर उसको ये खिलाफत दी जा सकती है। देखे ना, अगर एक अफसर है, कमिश्नर है, उसका जो डिप्टी कमिश्नर है उसे कमिश्नर की माननी है। अब एक चांसलर है तो एक वाइस चांसलर होता है, वाइस चांसलर, इसे अंग्रेजी में कहते हैं इन्नी, यानी कि जायलो फिल अर्द खलीफा, इसका खलीफा तो अर्द कहा जाता है, वो वाइस जेरेंट ऑन अर्थ करते हैं, हालांकि ऑन नहीं है वो इन अर्थ है। अब अर्थ ही का खैर, तो उसके लिए जो निज़ाम है वो हजूर मुर्शिदे करीम में अगले डायग्राम में, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक इंसान, ये अंदर जो है वाइट रंग का एक इंसान है, बेरंग, इसमें कोई रंग नहीं है। फिर उसके ऊपर देखें तो कितने रंगों के हाले बने हुए हैं। फिर उसके अंदर वही 6 रंगों के मराकज हैं। ये रंग जो हैं ये लताइफ के अपने रंग नहीं हैं, ये सिर्फ इंडिकेट करने के लिए हैं, लताइफ बात को समझाने के लिए हैं, और ये बात अगले यानी नक्शों में और जदवल्स में बताई जाएगी कि किस तरह से ये 6 लताइफ असल में वो सित्तत अय्याम की 6 बनावटें हैं। अब इससे अगला पेज देखें क्या लिखा है, कि पहले ये 3 देखें। ये स्याह रंग का कायनात की मालूमात का रिकॉर्ड, यानी इल्म, मालूमात किसे कहते हैं, इल्म, कायनात के बारे में अल्लाह ने अपना जो भी इल्म है उसका एक रिकॉर्ड बना दिया। अब गौर करें इसके नीचे चार लफ्ज लिखे क्या, कि नूरे मुतलक है, ये नस्मा मुतलक है, ये साबिता है, ये रूह आजम है। नूरे मुतलक, नस्मा, साबिता और रूह आजम, ये चारों असल में एक ही चीज के नाम है। ये चारों असल में एक ही चीज हैं। क्या? कायनात की मालूमात का रिकॉर्ड, कायनात की मालूमात के रिकॉर्ड के ऊपर ये टाइटल लगा हुआ है। अब उसकी दो सतहें हैं, दो सतहें हैं। जैसे ये एक पेज है, कायनात की मालूमात के रिकॉर्ड का एक पेज है। अब वो पेज का ऊपर का हिस्सा जो रोशनी की तरफ है, जो तजल्लियात की तरफ है, उसका नाम है लतीफा अख्फा। वो टॉप मोस्ट, इधर नक्शे में देखें तो ये जामनी रंग सबसे ऊपर दिखाया गया। उसके नीचे नीला रंग जो है वो है उसकी, यानी के पेज है ना, तो पेज की मिसाल मैं दे रहा हूं कि उसका एक सफा जो रोशनी की तरफ है और दूसरा जो नीचे की तरफ है, वो निचला सफा जो है वो लतीफा खफी कहला रहा है। यानी ये दोनों लताइफ मिलकर रूह आजम बन रहे हैं, ये दोनों लताइफ मिलकर साबिता कहला रहे हैं, ये दोनों लताइफ मिलकर नूरे मुतलक कहला रहे हैं, और इन्हीं को कायनात की मालूमात का रिकॉर्ड कहा जा रहा है। अब इससे नीचे देखें, ये ग्रीन लाइन है कि जिंदगी की तश्कील के अहकामात, यानी जिंदगी की शक्ल, जिंदगी की बनावट, उसके बारे में जो अहकामात सादर हो रहे हैं। अहकामात किसे कहते हैं? हमने बड़ी वजाहत से पीछे एक चैप्टर में पढ़ा कि ये फिकर को कहते हैं। पहला दायरा इल्म है, दूसरा दायरा फिकर है, जिसके नतीजे में अहकामात सादर हो रहे हैं। उसके भी चार नाम हैं। गौर करें क्या चार नाम हैं? नूरे मुफरद आयान, या नस्मा मुफरद और रूहे इंसानी। अब इसकी बनावट ऐसे है कि इसके सामने दो मजीद दायरे बनाए, एक है लतीफा सिर्री और दूसरा है लतीफा रूही। यानी इसी तरह जैसे ये ऊपर की बात अर्ज की कि एक पेज है, ये दूसरा पेज है, पहला पेज अपनी जगह पे, ये दूसरा पेज आ गया। अब ये जो ऊपर की सतह है दूसरे पेज की, वो पहले के निचली सतह की तरफ रुख किए हुए, यानी उसे लतीफा रूही कहा, और सॉरी उसे जी हाँ लतीफा रूही कहा। बहरहाल यहां मुझे लगता है कि ये लतीफा सिर्री ऊपर है, लतीफा रूही नीचे है। तो ये वाइट जो है यहाँ पे, अब डायग्राम में भी ये ऊपर है लतीफा रूही, तो लतीफा सिर्री उससे नीचे है। तो ये प्लेसमेंट सारी सिर्फ एक आइडिया देने के लिए हैं। तो इन दोनों का, यानी लतीफा सिर्री और एक लतीफा रूही का क्या है कॉम्बिनेशन जो है, ये जिंदगी की तश्कील के अहकामात हैं, या ये फिकर का मजमूआ है। यानी इसी को हुक्म कहा जा रहा है, इसी को फिकर कहा जाता है। यानी कि इल्म की रोशनी में जो कुछ सोचा जाता है वो असल में जिंदगी की तश्कील के अहकामात बन जाते हैं। अब उसके नीचे मजीद दो लताइफ हैं। अब ये देखें, ये सुर्ख रंग में लिखा हुआ है इनफरादी आमाल का रिकॉर्ड, कायनात की मालूमात का रिकॉर्ड, फिर जिंदगी की तश्कील के अहकामात, और उससे नीचे है इनफरादी आमाल का रिकॉर्ड। इसी को नस्माए मुरक्कब कहते हैं, इसी को जवैया कहते हैं, और इसी को रूहे हैवानी कहते हैं। अब ये भी रोशनी का एक दायरा है, जिसके लतीफा कल्बी और लतीफा नफसी। अच्छा, इसमें अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप इसको जब भी ये तरतीब अगर आप ठीक करें ना, कि ये लतीफा अख्फा को पहले लिखें और लतीफा खफी को बाद में लिखें, तो ये सारी तरतीब सेट हो जाएगी। ये जो इश्तबा हुआ ना कि पहले ऊपर ऊपर वाली सतह वो लतीफ़ अख़फ़ा है, ये लतीफ़ा सिरी ऊपर है, फिर लतीफ़ा कल्बी तीसरे पेज का ऊपर का हिस्सा है, ठीक हो गया। अब ये तो देखें, ये पूरा डायग्राम जो है, ये जो इसका टाइटल है और ये जो भी इसमें जदवल हैं, जिनको हम किताब पढ़ते हुए बहुत कम तवज्जो देते हैं, मैं आपसे इल्तजा कर रहा हूँ, दरख्वास्त गुजार हूँ कि इनको भी समझें, क्योंकि ये मुर्शिदे करीम ने सारी तालीमात का बात को समझाने का आसान कर दिया तरीका कि ये डायग्राम दे दिए। अब देखिए इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, ये जो नीचे अल्फाज हैं ये असल में लौह उस लौह कलम के अल्फाज हैं जो हजूर कलंदर बाब औलिया ने लिखवाई, लेकिन जब उसकी पब्लिकेशन का वक्त आया तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें डिस्कार्ड करवा दी। उनमें से कुछ चीज़ें हजूर मुर्शिद करीम ने कलंदर शौर में दे दी और कुछ दीगर कुतब में शामिल कर दी। ये बात बहुत अजीब बता दी मैंने आपको। अब ये बातें मुर्शिद करीम ने खुद फरमाई थी, इसलिए मेरे जहन में अचानक वो गुजरी कि ये चीज़ कलंदर शौर किताब में शुरू में दी गई है। क्या कि अब ये कायनाती प्रोग्राम की एक बनावट दिखाना मकसूद है इससे, कि किताबुल मुबीन है। किताबुल मुबीन का मतलब है पूरा प्रोग्राम जो तमाम कायनातों पे मुश्तमिल है, जिसको कुरान किताबुल मुबीन कहता है, वो असल में एक किताबुल मुबीन जिसमें 30 करोड़ लौहे महफूज, 30 करोड़ अलवाहे महफूज हैं, यानी उस ऐसी किताब या एक ऐसी हार्ड डिस्क जिसमें 30 करोड़ का मतलब हो गया 300 मिलियन 30 करोड़ अलवाहे महफूज हैं, और एक लोहे महफूज जो है यानी कि एक हार्ड डिस्क है उसमें 300 मिलियन फाइल्स हैं, और एक फाइल हर फाइल आगे 80,000 हजीरे हैं। अब ये हजीरे क्या होता है, हजीरे का लफ्ज जो है ये असल में पूरे कहकशानी निजामों को मुहित है। हजीरा एक पूरे मतलब के कहकशानी निजाम को, कहकशानी गैलेक्टियल सिस्टम, ये जो गैलेक्सीज होती हैं, ये जो हमें मिल्की वेज नज़र आते हैं आसमान पे, बहुत धुंधले, पहले जब ये रोशनियाँ इतनी नहीं होती थी तो आसान से इसे दिखते थे, मतलब नंगी आँख से भी दिखते थे। तो एक हजीरे में, अब एक हजीरे में 80,000 हजीरे, ज़रा ज़रब लगाएं, यानी इसको ज़रब दें, 80,000 को 300 मिलियन से, तो बताइए कि क्या रेशो बनी। 80,000 ज़रबे 300 मिलियन, और फिर एक हजीरे में यानी हर हजीरा 1 खरब से ज्यादा मुस्तकिल आबाद निज़ाम और 12 खरब गैर मुस्तकिल निज़ाम काम कर रहे हैं, यानी ये इतनी वसत है इन प्रोग्राम्स में। तो आपको कितना बड़ा दिमाग बनाना है, इससे आपको एक, ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप कमरे हिम्मत बांधें, इसलिए नहीं कि मरूब होके तो ठोस होके बैठ जाएं, अजी हम क्या कर सकते हैं, नो, ये आप पर मैं पढ़ रहे हैं तो ये हमारा जहन तैयार किया जा रहा है। आप इसे इस जज्बे से देखें कि एक निज़ाम से क्या मुराद है, वो किसी एक सूरज का दायरा वसत होता है, एक सूरज का दायरा वसत यानी एक सूरज की रोशनी जहां तक पहुंचती है, और जहां तक वो रोशनी पहुंचती है हर सूरज यानी स्टार के गिर्द 9, 12 या 13 सैयारे गर्दिश करते हैं, ठीक हो गया जी। ये आपको सिर्फ किताबुल मुबीन का एक हल्का सा खाका उन्होंने किसने? हजूर कलंदर बाब बौलिया ने और उनके मुमस्सल खानवादा सिलसिला अजीमिया हजूर मुर्शिद करीम ने ये बातें वाशगाफ कर दी, इन्हें सामने ले आए और ये बताया कि ये असल में इतना बड़ा सिस्टम निज़ाम है, इतना बड़ा प्रोग्राम है जो अल्लाह के ज़हन में। यहाँ पे मैं आपको अगली बात पढ़ने से पहले कुरान की तरफ, इकरा बिस्मे रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के नाम से। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है कि इकरा पढ़, और वो आगे से कह रहे हैं कि उम्मी, मैं उम्मी हूँ, मैं इसे नहीं पढ़ना जानता, तो हज़रत जिब्राइल क्या करते हैं? उनको आगोश में लेके ज़ोर से भींचते हैं, सीने से लगा के या आगोश में लेके या गले मिलकर ज़ोर से दबाते हैं और कहते हैं अब पढ़। यानी वो दबाने में उन्होंने क्या किया, उस डॉक्यूमेंट को जो उन्होंने वहां लाके रखा जिसके बारे में वो कह रहे हैं इसे पढ़। देखिए वो ये नहीं कह रहे कि मैं तिलावत कर रहा हूं तुम कुल कहो, यानी कुल पढ़ो कहो, नहीं कह रहे, ना कह रहे हैं यतलू, ये भी नहीं कह रहे कि इसकी तिलावत करो, क्या कह रहे हैं इकरा। और किरत कैसे की जाती है कि जैसे मैं ये रीडिंग कर रहा हूं, यानी एक चीज को देख के उसे पढ़ना। तो हजूर क्या कह रहे हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता, वो तीन दफा ये करते हैं तो वो सलाहियत उनके अंदर एक्टिवेट कर दी गई या हो गई। अब हम उनके उम्मती हैं तो हमारा क्या फर्ज नहीं है कि हम अपने नबी खातिमुन नबीन हजूर अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलते हुए अपने जहन को इतना बड़ा करें कि ये सलाहियत अल्लाह रब्बे करीम हमें भी अता कर दे। तो किताबुल मुबीन लाके वहां रखी गई और उसके बारे में कहा गया कि इकरा पढ़ इसको। और अगली बात क्या कही, खलकल इंसाना मिन अलक, तुझे तो पैदा ही इसलिए किया गया कि तू इसे पढ़े, हालांकि तुम्हारी तखलीक, मतलब कि तखलीकी सिस्टम दुनिया में ये सारा निज़ाम जो है ये बड़ा निचले दर्जे का है। अब तुमने यहाँ से राइज करके यहाँ तक जाना है, ये पहली आयत है ना कुरान की तरतीब नजूली में, यानी हमें बताया गया है कि ये पहली आयत जो गारे हिरा में नाजल हुई, इसका क्या मतलब है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये बुनियादी काम है जो इंसान ने करना है। यही बात हजूर अलैहिस्सलाम को कही गई और उन्होंने पूरी जान लड़ा दी। नतीजा ये कि वो मुकामे महमूद तक पहुंच गए, उसी दिन नहीं पहुंचे, 9 साल लगे उन्हें नबूवत मिलने के या गारे हिरा में ये पहली वही आने के बाद। जो मेराज का सफर है वो उसी दिन तो नहीं हो गया था, वो 9 साल बाद हुआ था। तो 9 साल वो कितनी, मतलब जो भी वो करते थे जैसे भी हो रहा था वो वहां तक पहुंचे। Having said this, अब ये जो ऊपर लताइफ का बयान है उसी की यानी के शरा करने लगे हैं मुर्शिद करीम कि ये पहला लतीफा जिसको अख्फा का नाम दिया है, जो इंसान के अंदर नुक्ता वाहिदा है, यानी कि ये जो तीन वरक हैं इसकी ऊपर की सतह का नाम है लतीफा अख्फा, और यही नुक्ता वाहिदा इंसान के अंदर, जब आप नीचे से ऊपर को जाएंगे तो ये है वो नुक्ता वाहिदा, यानी एक ही नुक्ता, यही वो नुक्ता है जो अल्लाह का घर है जिसमें अल्लाह बसता है। जिस नुक्ते के ऊपर बराह रास्त अल्लाह ताला की तजल्लियात का नजूल होता है, और यही वो नुक्ता है जिसके अंदर दाखिल हो जाने से इंसान कायनात में जारी हो सारी निजाम में दाखिल हो जाता है और कायनात के ऊपर उसकी हकूमत कायम हो जाती है, यानी उसका हुक्म चलने लगता है। یہی وہ نقطہ ہے جس میں داخل ہونے کے بعد اللہ کا یہ ارشاد سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب مسخر کر دیا. مسخر میں نے تسخیر کر دیا یعنی اس کو آپ کے تابع کر دیا, آپ کے حکم کے تحت چلے گا, آپ کے کہنے پر چلے گا. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اب مشین پہ دیکھیں نا, مشین بنانے والا کوئی ہے, کارخانے میں ایک بڑی مشین چل رہی ہے, لیکن ایک آپریٹر وہاں پہ کھڑا ہونا ضروری ہے جو اس مشین کو چلائے, اس کا آن کا بٹن دبائے اور پھر دیکھے کہ یہ اس کی ورکنگ ٹھیک چل رہی ہے. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہیں وہ بٹن آف کر کے اس کو سیٹ کر کے دوبارہ آن کر دیتا ہے. اسی طرح لطیفہ اخفا اور لطیفہ خفی کے دائرے کو روح اعظم, نور مطلق, نسم مطلق اور ثابتہ کہتے ہیں. لطیفہ اخفا کا مقام سر کے درمیان ہے, لطیفہ اخفا کا رنگ بنفشی ہے, لطیفہ خفی کا رنگ نیلا ہے, لطیفہ خفی کا مقام دونوں ابروؤں کے درمیان پیشانی پر ہے. روح اعظم یعنی خفی اور اخفا کو نہر تسوید ہر لمحہ سیراب کرتی ہے. یہ نہر تسوید سامنے اس کے 53 نمبر پہ دیکھیں, حجاب محمود کے نیچے, تو اس میں نہر تسوید لکھا ہوا ہے. اب لفظ تسوید کہتے ہیں سیاہ کو, اسی سے لفظ اسود ہے, اسی سے لفظ حجر اسود ہے. یہ اسود سودا اسی سے ہے لفظ. یہ حکمت میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس میں سوداویت کا غلبہ, یعنی کہ بلیک بائل کہتے ہیں اس کو. تو سودا کہتے ہیں سیاہی کو. سیاہی اس کو کیوں کہا؟ کیونکہ یہاں روشنی کا دخل نہیں ہے, یعنی کہ یہ زون روشنیوں سے اوپر کا زون ہے, اس لیے اس کو نہر تسوید کہتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ روح اعظم کو یعنی دونوں لطائف کو نہر تسوید ہر لمحہ سیراب کرتی ہے. اور روح اعظم سے واقف بندہ اللہ تعالی کی تقریباً 11,500 تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے. جب بندہ روح اعظم کے درجے پہ پہنچتا ہے تو اس کے سامنے اللہ کی 11,500 تجلیات آ سکتی ہیں, آ نہیں جاتی, اس کی ذہنی سکت کے ساتھ ساتھ ہے. وہ پہلے کسی, دیکھے نا تجلی کسے کہتے ہیں, تجلی اصل میں کسی صفت کے اظہار کو کہتے ہیں. جہاں پہ کوئی صفت کوئی صفت اپنا اظہار کرتی ہے تو وہ جہاں پہ اسپارک ہوتا ہے اسے تجلی کہتے ہیں. تو یہ تجلیات گویا 11,500 صفات کا وہ مشاہدہ کرنے لگتا ہے. لطیفہ اخفا میں علم الہی کی تجلی, اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں اور اسرار و رموز کا ریکارڈ ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں کیا ہیں اور اسرار اور رموز کیا ہیں؟ یعنی اللہ نے کوئی بھی چیز کیوں تخلیق کی؟ مثال ہے مکھی. اب ہم کہتے ہیں اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہے, مکھی کیوں تخلیق کی؟ تو اصل میں جب آپ کا ذہن کھلے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی مکھی پیدا ہوتی ہے جہاں گندگی ہوتی ہے, تو مکھی دراصل انڈیکیٹر ہے گندگی کا. ہم گندگی کے بجائے مکھی مار رہے ہیں, گندگی نہیں ختم کر رہے مکھی مار رہے ہیں. تو اس طرح سے جب بندے کا ذہن کھلنا شروع ہوتا ہے تو اسے پھر قدرت کی تخلیق کی مصلحتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں. اب اسرار کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ سر کی جمع ہے. سر کا مطلب ہے کہ اللہ کیوں چاہتا ہے, یعنی اس کا کیا راز کیا ہے. رمز, رمز میں نے اشارہ, رموز یہ اشارے کنائے جو ہیں ان سے کیا پتا چل رہا ہے, وہ ان کو سمجھنے لگتا ہے. तो ये किस चीज में? लतीफ़ अख्फा में। क्या होता है? इल्म इलाही, अल्लाह के इल्म की तजली। अब इल्म इलाही क्या हुआ? सिर्फ तो ही ना, तो अल्लाह का इल्म जो है उसका तजली जो है वो कुछ मसलहतें उसके तजली के अंदर क्या है कि अल्लाह क्यों चाहता है, यानी अल्लाह का जहन है कि मसलहत क्या है, इसके क्या राज हैं, उसकी क्या रमूज हैं, पूरा रिकॉर्ड होता है उसका। उन इन्हीं उन्हें यानी कि इस रिकॉर्ड को इन्हें लतीफ़ा खफी की रोशनी में पढ़ा जा सकता है। अब ये बड़ा टेक्निकल लफ्ज़ है कि रिकॉर्ड जो है वो लतीफ़ा अख्फा पे है, लेकिन पढ़ाई से लतीफ़ा खफी की रोशनी में जा रहा है। यानी हमें पहले अपने जहन को लतीफ़ा खफी तक ले जाना है, तब जाकर हम इस काबिल होंगे कि लतीफ़ा अख्फा को पढ़ सकें। ठीक है। सालिक, अपने पीरो मुर्शद की नजर करम और तफहीम की तर्ज पर। अब तफहीम की तर्ज क्या है? पीरो मुर्शद की नजर करम और तफहीम की तर्ज। तफहीम असल में एक पूरा प्रोग्राम है, लौह कलम में हम आगे पढ़ेंगे। इसमें रातों को जागना पड़ता है, रोजे रखने पड़ते हैं, साथ में अंधेरे में नजर जमाकर टिकटिकी बांधकर पलकों को झपकने से रोकते हुए घंटों की मशकें करनी पड़ती हैं, तब जाकर ये तफहीम का प्रोग्राम काबू में आता है। लेकिन तफहीम का प्रोग्राम अकेला जो है वो काफी नहीं है, साथ में मुर्शिदे करम, मुर्शिदे करीम की नजरे करम भी। तो क्या कहा कि अपने पीरो मुर्शिद की नजरे करम और तफहीम की तर्ज पर रूहे आजम की तहरीकात का मुतालिया करता है। यानी कि वो जो मुराकबों का एक टिपिकल स्टाइल है, उसमें बाकायदा कानों में काली मर्चें लगाई जाती हैं, आंखों पे पट्टी बांधी जाती है ताकि आंखों के डेले ना हिलें, वो फिर इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो बताया ये कि लतीफ़ अख्फा जमा लतीफ़ खफी बराबर है रूह आजम के या नूर मुतलक के, और इसी को नस्म मुतलक भी कहा या साबिता। तो गोया ये सारी टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल की और साथ में उसकी शरह कर दी। अब बात आ गई दूसरे दर्जे की, जिसे लतीफ़ सिर्री और लतीफ़ रूही के दायरे को रूह इंसानी, नूर मुरक्कब, नस्म मुफरद और आयान जिसकी वाहिद ऐन है कहते हैं। लतीफ़ सिर्री और लतीफ़ रूही के दायरे को, यानी कि एक दायरा है उसकी दो सतहें हैं, एक अंदर की सतह और एक बाहर की सतह। तो जो बाहर की सतह है उसे लतीफ़ सिर्री कहते हैं और जो अंदर की सतह है उसे लतीफ़ रूही कहते हैं। तो इस पूरे दायरे को रूह इंसानी कहते हैं या ये नूर मुरक्कब कहलाता है, इसी को नस्म मुफरद कहते हैं, इसी को आयान कहते हैं, और इसी आयान की वाहिद ऐन है। और लतीफ़ सिर्री का मुकाम सीने के दाईं तरफ है, लतीफ़ सिर्री का रंग सफ़ेद है। लतीफ़ सिर्री में फ़र्द के मुतालिक अहकामात लोहे महफूज के तमस्सुलात की शक्ल में महफूज होते हैं। अब इसको समझें, लतीफ़ सिर्री का अपना रंग सफ़ेद और उसमें फ़र्द के मुतालिक अहकामात लोहे महफूज में इज्तमाई होते हैं, यहाँ आते आते वो सेपरेट होके तो फ़र्द के मुतालिक रह जाते हैं। अब समझें कि ये एक प्रोग्राम हुआ जो अल्लाह के जहन में, और एक जो के ये सारे जो लताइफ का चक्कर है ये इंसान के अंदर जो मुकामात हैं जहाँ पे उसके हवाले से जो प्रोग्राम का हिस्सा है वो वहाँ पे आ रहा होता है। यानी वो अपने यानी इनफरादी सतह पे जो उसका प्रोग्राम है वो वहाँ पे मुंतकिल हो रहा होता है। तो ये रूहे इंसानी में हो रहा होता है। लतीफ़ सिरी का रंग सफ़ेद है, लतीफ़ सिरी में फ़र्द के मुतालिक अहकामात लोहे महफूज के तमस्सुलात की शक्ल में महफूज होते हैं। लतीफ़ सिरी मुतहर्रक होने पर बंदे की नज़र आलम में मिसाल पर पड़ती है। आलम मिसाल जहां पे हमारे इस मादी जिस्म से मिलता जुलता जिस्म काम करता है, इसे आलम मिसाल कहते हैं। लतीफ़ रूही का रंग सब्ज है, लतीफ़ रूही से मुतारिफ बंदे को आलम इराफ का शऊर हासिल हो जाता है, यानी उसको आलम इराफ का शऊर हासिल हो जाता है कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे या ये दुनिया में आने से पहले हम कहाँ थे, इसका शऊर आ जाता है। रूह इंसानी यानी लतीफ़ सिरी और लतीफ़ रूही दोनों को मिला लें तो इनको नहरे तजरीद, तजरीद अंग्रेजी में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट को, जिसमें कोई डायमेंशन नहीं होती, जो मुजर्रद होता है यानी सिंगुलर फॉर्म में होता है। नहरे तजरीद हर लम्हा से राब करती है और लोहे महफूज के ऊपर नोई रिकॉर्ड लतीफ़ रूही की रोशनी में पढ़ा जाता है। अब लतीफ़ सिरी जमा लतीफ़ रूही क्या बना, रूह इंसानी, इसी को नस्मा मुफरद कहते हैं और इसी को ऐन भी कहते हैं, इसी को नूर मुरक्कब भी कहते हैं। लतीफ़ कल्बी और लतीफ़ नफसी के दायरे को रूह हैवानी यानी नस्मा मुरक्कब यानी जवैया भी कहते हैं। और लतीफ़ कल्बी का मुकाम दिल है, इसका रंग सुर्ख है। लतीफ़ कल्बी में इंसान अपने आमाल का मुशाहिदा करता है, जब आप अपने दिल में उतरते हैं तो आपको अपने आमाल नजर आते हैं, आमाल जो आपने किया या जो आप करेंगे, उन आमाल को लतीफ़ नफसी की रोशनी में पढ़ा जा सकता है। उनको पढ़ने के लिए आपको अपने लतीफ़ नफसी की रोशनी का इस्तेमाल लाना चाहिए। लतीफ़ कल्बी मुतहर्रक होने से इंसान जिन्नात से मुतारिफ हो जाता है। अब ये देख लीजिए कि ये जो लोग बताते हैं कि जी हम जिन्नात हमारे कब्जे में, तो वो कहाँ हैं, वो ज़रा सा लतीफ़ नफसी से ज़रा सा ऊपर है, तो वो इंसान जिन्नात से वाकिफ हो जाता है अगर वो अपने लतीफ़ कल्बी से मुतारिफ हो जाए। और लतीफ़ कल्बी को नहरे तशहीद सैराब करती है। लतीफ़ नफसी इसका मुकाम नाफ से ज़रा नीचे है और लतीफ़ नफसी को नहर तजहीर सैराब करती है। लफ्ज़ तजहीर ज़ाहिर से, तशहीर शहूद से, शहद शहूद यानी जहाँ पे चीज़ें मज़हर नहीं होती लेकिन मुशाहदे में आ जाती हैं। तो लतीफ़ नफसी को नहर तजहीर सैराब करती है यानी कि वो नहर, वो चैनल, एक चैनल है रोशनियों का जो चीज़ों को मुजस्सम या मज़हर की सूरत में सामने ला रहा है। तो मुराकबे के ज़रिए लतीफ़ नफसी की रोशनियों में इजाफा हो जाता है। अब लतीफ़ नफसी जमा लतीफ़ कल्बी बराबर है रूह हैवानी के और इसी को नस्मा मुरक्कब कहते हैं या इसी को जवैया कहते हैं। तो ये वजाहत मैंने तो नहीं की, इसको सिर्फ रीड करके आपसे शेयर किया और आपको सिर्फ ये अंदाज़ा करवाया कि ये सारी बातें देखें कितना सिंप्लीफाइड हो गया, एक ही जगह उन्होंने सारा जमा कर दिया। वो सारी चीज़ें जो इधर उधर बिखरी हुई हैं वो एक पेज पे आ गई। ठीक हो गया जी? चलें, बहुत शुक्रिया जी कि आपने इतनी मोहब्बत से, इतनी शफकत से, इतने प्यार से सब सुनना गवारा किया, बल्कि सुना, बहुत शुक्रिया।